اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کنٹینیو کریں گے ہم اپنے ٹاپک کو. ہم نے ابھی اس سے پیچھے کیا دیکھا کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا, زنا اس کی زندگی میں نہیں ہے, اپنے کام سے کام رکھتا ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے. اس پہ تھوڑی سی بات کر کے آگے چلتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک بنیاد کی طرح ہے, ایک دیوار کی طرح ہے, اور دیوار کی ایک اینٹ دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کا جو فرقوں میں بٹنا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایمان کی کمی ہے. تو اپنی لسٹ میں اس پوائنٹ کو ڈال لیجئے, بعد میں یہ اپنے پورے پوائنٹس مجھے بتانے کہ ہم نے اس پوری سیریز میں ایمان کی علامتوں کے کیا کیا پوائنٹس دیکھے. فرقہ واریت ہوتی ہی وہاں ہے جہاں ایمان نہیں ہوتا. اگر سب کو اللہ سے ریوارڈ لینا ہے, اللہ ہی کی بات ماننی ہے, تو پھر فرقوں میں بٹنے کی بات کیا ہے؟ اب دیکھیے, کام اب دین کے لیے کرتے ہیں نا. آج بھی اس وقت اگر ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, یہ کتاب پڑھ رہے ہیں, یہ ٹاپک سن رہے ہیں, تو ہماری نیت یہ کہ اللہ راضی ہو. تو اللہ کو راضی اسی طریقے سے کیا جائے گا جس طریقے سے وہ راضی ہوتا ہے. تو اسلام اس بات کا جواب دیتا ہے کہ جب اللہ کی محبت نہیں رہتی, تعلق باللہ کمزور ہوتا ہے, ایمان کا درجہ ہلکا ہو جاتا ہے, تو پھر ہم فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں. آج آپ دیکھیے, ایک گھر میں سو گئے تو دوسرے میں خوشی ہے, دنیا میں کسی جگہ قتل و غارت ہے تو کسی جگہ شادیانے بچتے ہیں, لیکن ہم لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں اٹس اوکے, ٹھیک ہے, ہمارے گھر میں خوشی ہے تو ہم خوش ہیں. آج آپ دیکھیں کہ امت ہونے کے ناطے اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ امت کیسے دکھتی ہے. ہم خوش ہیں تو ہم خوش ہیں, ہمارے گھر غم ہے تو ہم غم زدہ ہیں. امت کا عمومی درد یا اس کا وہ معیار ہمارے سامنے نہیں ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے اپنے ایمان کو پرکھنے کی. خلاصہ کیا ہے اس کا؟ کہ اگر سچا ایمان ہوگا, خالص ایمان ہوگا, تو فرقوں میں بٹنے کی بجائے امت بنیں گے. چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر اپنی نیکیوں کو ضائع کر دینا, صرف اس وجہ سے کسی سے فائدہ نہ لینا یا کسی کو نہ دینا کہ ہم اس کے گروہ اور اس کی جماعت سے نہیں ہیں, اور مسلک کے فرق پر لوگوں کو دین سے روکنا, یہ سب ایمان کی کمی کی علامت ہے. جس بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرے اس کام سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا آخرت میں, قبر میں, دنیا میں, تو وہ نہیں پھر رکتا. پھر اس کے بعد اب ہم آگے دیکھیں گے مومن کا مقام کیا ہے. ایمان صرف دعوے کا نام نہیں, ایمان رویے یعنی ایٹیچیوڈ کا نام ہے. ایک سلوک اور ایک مسلسل عمل ہے. وہ رویہ, سلوک, عمل اور تربیت اگر نہیں آئی تو ایمان دل کے اندر موجود نہیں. انسان اگر صرف اقرار باللسان تک محدود ہے تو وہ شخص مومن نہیں. اگر اللہ ایمان عطا فرما دے تو مومن کا مقام یہ ہے کہ فرمایا لیس شیئن اکرم علی اللہ من المومن, مومن سے زیادہ اللہ کے لیے عزت والی کوئی چیز نہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں. دیکھیں, آپ تو خانہ کعبہ کو کہتے ہیں نا, قرآن پاک کو کہتے ہیں, جائے نماز کو کہتے ہیں, کسی بھی اسلامک چیز کو کہتے ہیں, جبکہ اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ چیز, باعزت چیز مومن ہے. حتیٰ کہ مومن کا قتل اللہ کو اتنا ناگوار گزرتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دے. لیس شیئن اکرم علی اللہ من المومن, مومن سے زیادہ اللہ کے لیے عزت والی کوئی چیز نہیں. اور فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مومن لا کبہم فی النار, آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب مل کر اگر ایک مومن کے قتل میں شامل ہو جائیں تو میں سب کو ہی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دوں. یعنی اگر ایک مومن کے قتل میں پوری دنیا کے انسان, مخلوقات, آسمان اور زمین شریک ہو جائیں تو فرماتے ہیں کہ مومن کا خون مجھے اتنا عزیز ہے کہ میں سب کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دوں گا. اور فرمایا من عاد لی ولیا فقد آزنت له بالحرب, جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی یعنی عداوت رکھی, یہاں دوست سے مراد مومن ہے, میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب دیکھیے, اس ایک بات کو پڑھ کر آپ کو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے اگر آپ کے اندر ایمان ہے. پھر عزت کی حفاظت, جان کی حفاظت, مال کی حفاظت. یعنی جب کوئی کسی ایک مومن کو قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ یہ آپ سوال لکھیں خود سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کے لوگ شریک ہیں کسی ایک کے قتل میں تو میں اس ایک کے قتل کی وجہ سے ان سب کو آگ میں ڈال دوں. وجہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مومن کا قتل صرف ایک فرد کا قتل نہیں ہے, پانچ نمازوں کا قتل ہے جو وہ ایک دن میں پڑھتا تھا، 30 روزوں کا قتل ہے جو وہ ایک سال میں رکھتا تھا، ایک جمعے کی نماز کا قتل ہے جو ہر ہفتے میں پڑھتا تھا، اور دن رات اس کی طرف سے جو نیکیاں بڑھ بڑھ کے آسمانوں کی طرف جا رہی تھی وہ سب قتل ہو گئیں۔ مومن قیمتی کیوں ہے؟ اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اچھا لگتا تھا یہ سب کچھ کرتا ہوا، کسی نے اس کو مار دیا، اللہ کو غصہ آیا۔ میں اس کو اس فیلنگ سے سوچ رہی ہوں کہ چلتا کاروبار کوئی آپ کا ڈبو دے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے میری چلتی دکان پہ لات ماری، جہاں سے مجھے ہر مہینے اتنا نفع تھا، اتنا کھانا آتا تھا، اتنا پیسہ تھا، اس سے میں اتنا کچھ بناتی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ یعنی مومن ایک چلتا پھرتا کاروباری ہوتا ہے، وہ دن رات اللہ سے تجارت کرتا ہے۔ ایک کھوٹا سکہ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے کہیں بھی، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ چلیے آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں۔ آپ کے گھر میں کوئی ایک ایسا بیکار سا برتن سال ہا سال استعمال نہیں ہوتا، دوسرا وہ برتن ہے جس دن میں کم از کم 10 دفعہ آپ اٹھاتے ہیں، کوئی چھری ہے، کوئی چمچ ہے، کوئی ماچس کی ڈبیا ہے، چاہے وہ معمولی ہے، لیکن وہ ماچس کی ڈبیا نہ ملے یا وہ کوئی ضائع کر دے اور آپ کھانا نہ پکا سکے، آپ کو زیادہ غصہ آئے گا نا اس قیمتی برتن کے نہ ملنے سے جو آپ کو استعمال ہی نہیں کرنا۔ ساری دنیا کے لوگ وہ بس ایک شو پیس کی طرح رکھی ہوئی کوئی چیز ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، لیکن مومن ہر وقت استعمال ہونے والی چیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ مومن سے اللہ کا تعلق کیسے نہ بنے، ہر تھوڑی دیر پر تو وہ آ کے مسلح پہ کہتا ہے یاک نعبد و یاک نستعین، تھوڑی دیر بعد آ کے اللہ تعالیٰ سے محبت والے جملے بولتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور مومن سے اللہ کو پیار کیوں نہ ہو؟ کیونکہ مومن تو دن میں کئی بار اللہ کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کا اقرار کرتا ہے، مالک یوم الدین کی صورت میں۔ تو خلاصہ کیا ہے بات کا؟ بندے کی ویلیو اور اس کی قیمت اس کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اب ایک بیکار مومن ہو، نام کا مومن، بلکہ محمد ابراہیم، دو نبیوں کا نام جوڑ کے آپ نے نام رکھ دیا، نہ وصف محمد والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ابراہیم والے، تو اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر آپ یہ معیار لے کر دنیا میں نکلیں گے تو بہت مایوس ہوں گے، چند گنتی کے ایمان والے آپ کو دکھیں گے۔ پھر اگلی بات دیکھیے گا، ایمان ایک شعوری عمل کا نام ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اصل میں اس وقت جس چیز پہ میرا مائنڈ چل رہا ہے نا ان دنوں میں، وہ لفظ شعور پہ چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں اس پہ درس بھی کافی دیے، لیکن جو چیز اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، جو چیز انسان کو مومن بناتی ہے یا کافر، وہ اس کا شعور ہے۔ آپ دیکھیے اسلام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا جو شعور کو ختم کر دے۔ سب سے بڑی مثال نشہ، شراب، اس میں بندے کا شعور ختم ہو جاتا ہے، اللہ کو گالی بھی دے سکتا ہے، خود کو رب بھی کہہ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے سود، شعور ختم ہو جاتا ہے، اس سے تو آپ لے جو دے سکتا ہے، سود میں تو اس کا خون نچوڑا جاتا ہے جو پہلے ہی آپ سے قرض مانگنے آیا ہے، شعور ختم ہو گیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے رشوت، مجبور کی مجبوری کو خریدا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ گنتے جائیں گے ہر وہ چیز جو بندے سے شعور ختم کر دینا، اسلام کہتے ہیں اس کو پیچھے کر دو، 500 سے تیر معلوم کرنا، سور کا گوشت کھانا، یہ سب کچھ بندے کو بے شعور بناتا ہے۔ اب ایمان کیسے ایک شعوری عمل ہے، اس کو ذرا ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ میرے پاس ایک سائیکل تھی، اس سائیکل میں بیماری یہ تھی کہ اس کے کتے فیل ہو جاتے تھے۔ کسی سائیکل کے کتے فیل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے پیڈل جتنے چاہیں مارتے رہیں، پہیا نہیں گھومے گا، اور تھوڑی دیر بعد آپ سائیکل سے نیچے اتر آئیں گے، یا اگر آپ کے پاس کار ہے اس کو آپ ایکسیلیٹر دیتے رہیں، لیکن اگر آپ نے گاڑی کا گیئر نہیں لگایا اور ایکسیلیٹر کا گیئر بکس سے کوئی رابطہ نہیں، اس سے اس کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، تو آپ جتنا مرضی ایکسیلیٹر دباتے رہیں، پیٹرول جلتا رہے گا، گاڑی زوں زاں کرتی رہے گی، لیکن ایک قدم آگے نہیں بڑھے گی۔ اب اسے آگے ہائی لائٹ کریے گا۔ اس مثال سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے ایمان کا عمل کے گیئر بکس کے ساتھ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، जब हम एक्सीलेटर देते हैं तो शोर तो बहुत मचाता है, हम इस पर खुश हो जाते हैं। ये देखिए और सोचे बगैर कि कुछ फासला भी तय हुआ कि नहीं, इसको हाईलाइट करें। जो गाड़ी चले, पेट्रोल जले, गाड़ी गर्म हो, लेकिन कुछ फासला तय ना हो, आप उसको गाड़ी कहेंगे? उसका मकसद हासिल हुआ? बिल्कुल इसी तरह कुछ अमल भी हुआ है या नहीं, कुछ मंजिल की तरफ बढ़े हैं भी कि नहीं। हम समझते हैं कि मुसलमान के घर में पैदा हुए और नाम अब्दुल्ला या गुलाम फलां कुछ भी रख दिया तो अब ईमान का कुछ नहीं बिगड़ा, अब तो हम मुसलमान ही हैं, हम ईमान को एक सुनी सुनाई चीज समझते हैं। ये कहते हैं कि 1947 की बात है, जब मैं दूसरी जमात में था तो वालदा मुख्तरमा से मैंने पूछा, हम कौन हैं, शिया या सुन्नी? उन्होंने कहा, हम सुन्नी हैं। बस उस दिन से मैं सुन्नी हूँ। अब सुन्नी शिया क्या होता है ये 20 साल तक पता नहीं लगा। अब इतनी सारी बात जो हमने पढ़ी है, इसका थोड़ा सा खुलासा, ईमान बंदे के शऊर को बेदार करता है। देखिए, आप दुनिया में किसी भी अक्लमंद इंसान का तसव्वुर लाएं, मसलन अगर आपके घर में कारोबार या बिजनेस का रिवाज है तो आप अपने भाइयों, बाप, इवन अगर शौहर या बेटे इस लाइन में, आप कभी उनका ब्रेन चलता हुआ देखा करें। अखबार पढ़ेंगे ना, उसमें से भी वो कोई कारोबार की चीज़ ढूंढ लेंगे। वो कहीं घूमने जाएंगे ना, किसी मशीन को काम करता देख कर कहेंगे, अगर इसका बिजनेस करें ना बड़ा अच्छा चलेगा। यानी किसा मुख्तसर कारोबारी जहन वाला बंदा किसी भी जगह जाए, हत्ता के होटल में खाना खाने जाएगा, कहेगा होटल का बिजनेस करना चाहिए, बहुत पैसा बनाते हैं, क्योंकि उसका ब्रेन चलता है। बस आप लिखे, जिस तरह एक कारोबारी का जहन कारोबार में चलता है ना, इस तरह मोमिन का जहन ईमान को बढ़ाने में चलता है। आपका ईमान आपकी फोर्स है, इन्फोर्समेंट करनी पड़ेगी। ये जो साइकिल की मिसाल है ना, आप इसको बिल्कुल वही मिसाल से ले जो एक दफ़ पहले भी आपको दी थी सवीरुल जन्ना में भी, कि अगर चार दोस्त हैं किसी पेट्रोल पंप पे मिले और चारों ने अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करवाई, एक मॉडल की ब्रांड न्यू गाड़ी है। अगले महीने जब दोबारा मिले, सुनाओ भाई कैसा रहा? एक कहता है, जब उस दिन आया तो उसके बाद आज पहली दफ़ा आया हूँ। दूसरा कहता है, नहीं, मैंने 15 दिन के बाद दोबारा भी गैस डलवाई थी। तीसरा कुछ और कहता है, चौथा कुछ और कहता है। आप मुझे बताएंगे फ़र्क क्यों है? एक को एक हफ्ते बाद ही गैस की ज़रूरत पड़ गई और दूसरे को पूरे महीने बाद पड़ी। जवाब बड़ा वाज़े कि जिसने गाड़ी जितनी चलाई उसकी गैस कम हुई, उसको और चलानी पड़ी, और जिसने जाकर गाड़ी घर में बंद कर दी और शायद 10 मिनट रोज चलाई होगी, उसको सारा महीना जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह हम दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं, 5 नमाजें, या मस्जिद को आप पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन कह दें। हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं ना, इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, तो हमारे अंदर ईमान का पेट्रोल जाता है। मैं आपसे पूछूं कि आपने फजर पढ़ी? आप कहते हैं, जी बिल्कुल पढ़ी, वक्त पे पढ़ी, वक्त पे पढ़ी। मैं पूछती हूँ कि फजर पढ़ने के बाद आपने किया क्या? आप कहते हैं, क्या करना था, उसके बाद कुछ करते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि जब कोई गाड़ी में पेट्रोल डालता है तो उसके बाद क्या करता है? गाड़ी चलाता है। फजर की एनर्जी जोहर की नमाज तक नेकियां करने में अगर लग चुकी हो तो जोहर वक्त से पहले पढ़ने को दिल करता है, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया। खाना खा लिया आपने, उसके बाद काम में लग गए, तो खाना तो हजम हो जाएगा 5-6 घंटे में, फिर भूख लगेगी। और खाना खाएं और सो जाएं, बल्कि उठेंगे तो कहेंगे सीना जल रहा है, उबकाइयाँ आ रही हैं। जिस तरह पहला खाना हजम नहीं होता तो और खाने को दिल नहीं करता, इसी तरह ईमान की खुराक खाने के बाद अमल सवाले की कोशिशें नहीं होती तो और ईमान की जरूरत ही नहीं होती। कुछ लोग हैं रोज़ कुरान पढ़ते हैं, कई कई घंटे पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं और पढ़े। कुछ सुबह भी पढ़ते हैं, शाम भी पढ़ते हैं, कुछ हफ्ते में एक दिन और कुछ महीने में एक दिन। और कुरान पढ़ने को दिल क्यों नहीं करता? चले आप कुरान को इल्म पे ले लीजिए, हम इल्म हासिल करते हैं ना, कोई अभी शुरू कर रहा है, कोई कई साल से कर रहा है। और इल्म किसका दिल करेगा लेने को जो पिछले इल्म को एब्जॉर्ब करके उसको अमल सालेह में बदल चुका होगा। जब कभी आपके दिल से इल्म की तलब कम हो, ये तो मैं कहती हूँ आप अपने स्कूल के बाहर लिख के लगा दें स्लोगन, क्योंकि यहाँ इल्म ही बटता है और आपको क्या देते हैं यहाँ। और इल्म लेने की तलब जब खत्म हो जाए तो दो में से एक वजह जरूर होगी, दो में से एक वजह जरूर होगी। नंबर एक, पिछला इल्म हजम नहीं हुआ या उस पर अमल नहीं हुआ, उसको जज्ब नहीं किया। और दूसरी बहुत बड़ी वजह लिख लें, बड़ा सा लफ्ज, कोई गुनाह। इफ़ेक्ट्स ऑफ सिंस यानी गुनाहों के असरात, एक किताब है इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्ला की, उसमें 20 से 25 से ज़्यादा उन्होंने असरात लिखे हैं कि गुनाहों के क्या असरात है। पहला नंबर वन उसमें क्या है, इल्म से महरूमी। इमाम शाफी का वाक़िया भी उसमें उन्होंने बयान किया हुआ है कि इल्म हासिल करने जा रहे थे, रस्ते में किसी खूबसूरत औरत पर बस नज़र पड़ी, दैट्स इट, चल पड़े फिर वहाँ से। लेकिन उस दिन क्लास में दिल नहीं लग रहा, वहाँ देखिए एक औरत पे नज़र पड़ी, पाँव पे हाथ पे, तो दिल नहीं लगा। तो जो फिल्मों और ऐसी गंदी तस्वीरों से उठकर आके टीवी देखकर यानी ऐसी चीज़ें देखकर इल्म की तरफ आएगा, उसका कहाँ दिल लगना है, क्यों उनको अच्छा लगे, वो कहेंगे बोरिंग है, इससे तो अच्छा था मैं एक एक सपारा पढ़ते और आधे घंटे में फारिग हो जाते। तो जब दिल ना लगा तो बाद में उस्ताद को कहा कि आज दिल में कुछ फ़र्क था, क्यों भाई क्या हुआ, बता दिया कि आज सुबह ये वाक़या हुआ। तो उस्ताद जिनका नाम वकी था, उन्होंने फिर कहा कि इन्नल इल्मा नूरुन, इल्म एक नूर है, और ला यूती, और नहीं देता अल्लाह ये नूर किसको, कल्ब नासी, गुनाहगार दिल को। कहा दिल को गुनाहों से पाक करो, क्योंकि दिल के बर्तन में जब गुनाह आ जाते हैं तो इल्म का नूर चला जाता है। इस दो के सिवा मेरा नहीं ख्याल कोई तीसरी वजह हो सकती है, बहाना कोई भी होगा, वजह कोई और बनती है, लेकिन असल वजह या तो हमारा कोई गुनाह है, पकड़ में आए में अल्लाह की अपने किसी गुनाह की, और या पहले को ही मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो जब इल्म का शौक खत्म होगा ना, तो फिर मजीद इल्म लेने का दिल नहीं चाहेगा। तो गाड़ी तभी जाती है पेट्रोल पंप पे जब तेल की जरूरत होती है। चलाएं अपने अमल की गाड़ियां ताकि इल्म अमल और है। देखिए ना, सहाबा को क्यों हर वक्त वो क्रेविंग होती थी, हर नेकी करके थोड़ी देर बाद पहुंच जाते थे, और क्या करें, या सलूना का माजा यूनफिकून, क्या खर्च करें, किस काम से अल्लाह खुश होता है, हमारा कौन सा अमल है जो क्यामत के दिन पुल सरात पे हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो ये शऊर पैदा करना, हम सब अपने लिए दुआ करते हैं, 3-4 सेकंड लें, क्योंकि इल्म की महफिल में दुआएं भी कबूल होती हैं, कि अल्लाह मेरा शऊर ना मरे, दिले मुर्दा दिल नहीं से जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्दे कोहन का चारा। जो लोग आज बेतलब बैठे हैं ना, असल में बेशऊर है। अभी एक कोई सिस्टर कह रही थी आप लोगों में से ही कि मैं गलियों में जाकर दरवाजे नॉक कर करके भी कह रही हूँ कि आओ सीखो सुनो, लोग फिर भी नहीं आते। तो जो आते हैं उनको लगता है कुछ मिलता है, अगर आप ना आ रहे होते ना तो आपको भी लगना था कुछ नहीं मिस हो रहा। ये नोट कर लें, इल्म लें तो लगता है बहुत कुछ मिल रहा है, और इल्म छोड़े, छुट्टी कर लें एक सिर्फ आप, तो आपको कभी नहीं लगेगा बहुत कुछ गया। जिसको एहसास हो जाता है ना छुट्टी करके कि मेरा आज बहुत कुछ गया, वो अगले दिन उल्टा चले सीधा चले वो पहुंच जाता है। जो घर बैठ जाते हैं ना लोग, अगर उनको एहसास भी हो जाए ना कि हमारी क्या दौलत गई है, 100 वजीफा पढ़े जाएं, 1000 दानों की तस्बीह घर बैठ के करें, चिल्ले करें, वजीफे करें, जो मर्जी तसव्वुरे शेख करके बैठे रहे, जो आपको इल्म से खैर मिलनी थी वो उससे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सुन्नत तरीका है, वो बाद का अडॉप्टेड तरीका है, तभी तो बेअमली है। जो अमल आपके पिछले 10 साल में इल्म सीख कर आया होगा, वो पिछले 15 सालों में कोई नहीं आया होगा। ये इल्म था जिसने आपको हरकत में डाला और आप क्या कुछ कर गए। आज भी ये इल्म का पानी मिलता रहेगा, आपके दिल की जमीन पर ईमान का पौधा हरा रहेगा, और शैतान को ये पता है, इसलिए इल्म के रास्ते दुश्वार करता है। सबसे मुश्किल रास्ता इल्म का, शऊर का रास्ता है। तो शऊर अल्लाह जिंदा कर दे, और उम्मत का तो शऊर ही मरा हुआ है। गम दुख तकलीफ की बात है, बेशौरी की जो अलामतें आज उम्मत मुस्लिमा में दिखती हैं, कपड़े पहन के नंगी हैं औरतें, इतने चुस्त पजामे हैं कि लगता ही नहीं है कुछ पहना हुआ है, और अगर पहन भी वो स्किन कलर का ले। मैं एक जगह थी, दूर बैठी एक सिस्टर, मुझे वल्ला ही बार बार मेरी तवज्जो जा रही है कि अल्लाह रहम करे कि ये ऐसी आ गई हैं, इतनी लंबी चौकस वाली कमीज, और मुझे दूर से कुछ नहीं लगा, करीब आई तो पता चला छिलके नुमा एक और खाल चढ़ाई हुई है टांग पे। ये शऊर है, और मैं कहती हूँ वो माएँ कितनी बेशऊर हैं जो अपनी जवान होती हुई बच्चियों के ये छिलके खरीदती हैं, शर्म नहीं आती। यानी ये वो मौजू है जिसपे अभी भी मैं पाकिस्तान में थी तो मेरी एक टीचर थी तो उनके साथ बात, वो कहती मैं अपने आजकल हर दर्स में ये बात कोशिश करती हूँ लोगों को मैसेज दूँ। हरम में मैंने खुद सुनी है, पिछले साल उम्रे में गए जुम्मे का खुतबा था, हरम में इमाम साहब ने जिन दो इश्यूज पे बात की वो एक सर के ऊपर हम जूड़ा सा बना के जो स्काफ पहनना और दूसरा ये पतले पजामे, ये कोई शऊर की बात है? आपके जिस्म का अंग अंग दिख रहा है, जोड़ जोड़ दिखता है, आपकी चलें तो आपकी कमर मचकती हुई चले, ये कोई लिबास है? ये तो अकेले में भी नहीं पहनना चाहिए, शैतान को अपने पर हमला करवाने वाली बातें। तो शऊर जिंदा होता है तो बंदे को सबसे पहले अपनी इज्जत की फिक्र पड़ती है, हया आ जाती है। तो आप सब भी अपनी बच्चियों को मैं कहती हूँ फाड़ के फेंक दें मत इस धोखे से, अगले सर्दियों में नीचे पहन लेंगे, सर्दी बड़ी लगती है, खाक सर्दी लगती है, पहले भी तो लोग करते ही थे। ये सिर्फ धोखे हैं, शैतान के धोखे हैं। कमीजें रह गई बाजारों में, शलवारें खत्म। मैं खुद हैरान थी एक दो चीजें लोगों के सामने आई, पहले कहते दुपट्टे नहीं मिलते थे क्योंकि लोगों ने दुपट्टे छोड़े, फिर रेडीमेड कपड़ों में बाजू नहीं है जी क्योंकि लोग स्लीवलेस पहनते, वैसे आपको चाहिए तो दे देंगे, और अब शलवार ही गायब है, आपको वो कुर्तियां शुर्तियां दे देते हैं, आप उसके साथ पहन ले जो मर्जी, आपके दो पजामे पहने। तो शर्म नहीं आती एक मुसलमान माँ को, बेटी को, बहन को और बाप को और शौहर को, खबरदार घर से बाहर निकली अगर आपने कपड़े नहीं पहनने, इस पे तो बोलने की जरूरत है। ये शैतान का फितना है। और ये कोई शऊर है कि आपके सर के ऊपर कोई हजार फुट लंबी तस्वीर लगी हुई एक औरत की जो आपको लॉन के कपड़े बेच रही है? पाकिस्तान में आप सुनिए, ये पिछला महीना मेरा अला सब दरसों में इस पर बात हुई है, नजरें नहीं उठती आपके ड्राइवर, मैं कहती हूं उनका ईमान खतरों में आपने डाला हुआ है कि भूत जितनी औरतें आपके सरों पे मुसल्लत हैं, इतने आठ आठ फ्लोर आपकी बिल्डिंग्स हैं और उस पर एक औरत की तस्वीर लगी और साथ एक ब्रांड लगा हुआ है, ये मैं अपनी आंखों से देख के आई हूं। ये शऊर है? कपड़े पहले भी बिकते थे, लौने पहले भी बिकती थी, अब कुछ ज्यादा लफ्स देख के कहते हैं किस ब्रांड का, खाक जैसा डिजाइन हो कपड़ा कौन देखता है, नाम बता दो कौन सा, मोहर रह जाए बाकी चीजें काट दो। ये बेशौरी कौम की अलामत है, वो कौम जिसके अंदर सड़कें टूटी, जिनके पास कुछ है नहीं, उनको हक पहुंचते 10-10 हजार रुपए का एक जोड़ा पहने। आपको पता है 5 हजार से लॉन का जोड़ा इस वक्त पाकिस्तान में शुरू हो रहा है, मैंने तो जितने देखे मुझे तो यही देखे, होंगे भी कम भी। भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई है आपको ये 7-8 हजार रुपए का एक लॉन का जोड़ा, फिर आपने कहना शादी में नहीं पहनना, फिर कहना जी ये सूती है, और वो जोड़े की कीमत नहीं है? कॉटन तो अल्लाह ने आज भी हमारे मुल्क को दी है अल्हम्दुलिल्लाह, वही जमीन है जो पहले थी, बीज थोड़ा सा महंगा हो गया होगा। ये कीमत उस औरत की है जो सर पे चढ़ के बैठ के दिखा रही है, जिसको उसने पैसे दिए हैं मॉडलिंग करो, ये डिजाइनर्स की कीमत है, ये उनकी है। वो जोड़ा आपको 5 का पड़ता है, जो 500 का था वो हजारों में बदल गया। ये आपको मार्केटिंग के पैसे देने पड़ते हैं, ये आपको उनके एडवर्टाइजमेंट के देने पड़ते हैं, लेकिन उम्मत ऐसी है गरक है, हक की नहीं पहुंचता किसी को इतना महंगा कपड़ा पहनने सिलाने का जिस मुल्क की सड़कें टूटी हो। घर देखें और सड़कें देखें, पानी में छप छप करते पांव जाते हैं, अंदर जाते हैं आपकी आंखें खुल जाती हैं, इतना बड़ा विला। तो ये बेशौरी बात है। आपने अगर मुल्क की मैं बात कर रही हूं, दर से कर रही हूं, कोई मैं गीबत नहीं कर रही, खुली आम बात है, फिस्क तो हर एक को दिखता है। लेकिन आज अगर आप अपनी उम्मत को ईमान दे दें, मैं कह सकती हूं अगर उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह कोई ऐसा लीडर दे दे एक कि जो इनके दिलों में ईमान का बीज डाले, और वो आएगा इल्म के रास्ते से, वो फर्ज कर दे के इल्म हासिल करोगे, फिर देखिए कि आपकी सड़कें भी सीधी होंगी, चोरियां भी खत्म हो जाएंगी, आपका मुल्क सोने की चिड़िया बन जाएगा। आज भी है किसी लिहाज से, ये ईमान ना होने की सजाएं खा रहे हैं हम लोग। बायकॉट कीजिए आप ऐसी चीजों को। मैं तो जितना मैसेज दे सकी इस महीने में यही दिया, मत छोड़िए, जाके कहकर आइए कि हमने लेना था, नहीं लेंगे इस वजह से हम नहीं ले रहे, पसंद आ गया क्या हो गया, पहन लेंगे तो एक जैसा हो जाना, पसंद चीज तब तक ही होती है जब तक नहीं ली होती। उनको बता के प्यार से, अच्छे तरीके से, समझदारी से बताएं कि आप ये क्या कर रहे हैं। बिलीव मी, हादसे होते होते बचते हैं, आप मोड़ मुड़ते हैं आगे तस्वीर होती है, ड्राइवर कहते हैं हमारी नजर भटक जाती है। ये ऐसे ऐसे बड़े मंजर हैं कि आप शायद जिस शहरों में जाते, जहां मैं रही हूं मैंने तो यही देखा है, सड़कों पे रश, दुकानों पे रश, और हर जगह आप देखिए कि ऐसे लगता है कि 15 फरवरी या 14 फरवरी आज तक, हमने तो आज से 5 साल पहले कोई नहीं था पाकिस्तान में ये चीज़ देखी, आज आप 15 फरवरी को जाकर पाकिस्तान में देखें, कोई होटल नहीं खाली, कोई फूल नहीं बाकी, सड़कों पे फूल लेकर बैठे, ये वैलेंटाइन डेज है। आप 14 फरवरी जी, आपके मुल्कों में इधर शायद वही बनाते होंगे जो मनाते होंगे, आपके तो वहां सड़कों पे मन रहा। ये बेशौरी कौम की सारत, और शौर को बेदार करता है तो इकरब इसमें रब्बी का, इल्म इल्म इल्म, ये आपको भी बेदार करेगा और यही आपकी नस्लों को भी करेगा। इस वक्त मुसलमानों को जिस चीज की जरूरत है वो इल्म है। नमाजें हैं तो बेरू हैं, मस्जिदें हैं तो उसमें है क्या, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, इख्तलाफात हैं। इल्म दीन का भी दिया जा रहा है, शऊर नहीं दिया जा रहा, तो शऊर लाएंगे तो फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। अगला टॉपिक इसी से रेलेवेंट लेकिन बहुत ही स्ट्रांग है, दीन एक तहरीक है। सच्ची जो बात है, अभी तक हमें दीन की असल भी नहीं पता लगी और हमारे दुनिया से जाने के वक्त करीब आ रहे हैं। दीन एक मूवमेंट है। तहरीक किसको कहते हैं इंग्लिश में, आपने सुना होगा मूवमेंट। रूट इसका क्या होगा? हरका, हरकत। यानी दीन जमूद का नाम नहीं है, साइलेंस का नाम नहीं है, एक स्टेगनेंट वाटर की तरह दीन नहीं है कि जिसमें मच्छर बैठ जाए। दीन एक चलता हुआ दरिया है, एक समंदर है, इसमें मौजें उठती हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर इस पे बात करते हैं। यही कैफियत होती है जब हमें घर में कह दिया जाता है कि तुम मुसलमान हो। अब मुसलमान क्या होता है इसकी किसी को खबर नहीं। मुसलमान होना एक रवैया, एक जिंदगी है। लिख लें, मुसलमान होना एक रवैया है, ये कोई नाम नहीं है, टाइटल नहीं है, एक तर्ज जिंदगी, एक लाइफ स्टाइल है। मुसलमान होना एक तहरीक, एक जज्बा, एक लहर, एक मौज है। ये किसी को पता नहीं। फिर इन्होंने अरब फारसी के कुछ शेर लिखे हैं, तर्जमा क्या है उर्दू में पढ़ देती हूँ ताकि वक्त आपका भी बचे। कहते हैं हजारों साल से खड़ा हुआ साहिल पूछ रहा था कि मैं क्या हूँ, मुझे अपनी हस्ती का शऊर नहीं है। करीब से एक मौज गुजरी, इसने साहिल को जोरदार थप्पड़ रसीद किया और थप्पड़ मारती हुई से यूं कहती गुजर गई कि हस्तम अगर मी रूम, गर ना रूम नीस्तम। मैं तुझे बताती हूँ वजूद किस चीज का नाम है, मैं मौज लहर हूँ और मेरा वजूद इस बात का नाम है कि मैं तुझे ऐसे ही थप्पड़ मारती रहूं। हस्तम अगर मी रूम, अगर इसी तुंदी से मैं चलती रहूं तो बहसियत मौज के मेरा वजूद बाकी है। अगर मुझ में ये तुंदी तेजी तड़पना फड़कना खत्म हो जाए तो मैं खड़ा पानी बन जाऊं, मैं बहसियत मौज लहर के खत्म हो जाऊं। बात समझ आई है? किनारा तो खड़ा है ना, मौज चल रही है, तो किनारा कहते मैं क्या हूं, तो मौज उसको थप्पड़ मार के कहती तू कुछ नहीं है क्योंकि तू एक जगह खड़ा है। चलने का नाम जिंदगी, कहते ना हरकत में बरकत है। दीन एक मूवमेंट है, एक भाग दौड़ है। अलामा इकबाल मुसलमान को जुए कोहिस्तानी कहते हैं। पहाड़ी नदी जो बड़ा शोर बरपा करती है, इसका पानी जिस तरह कुव्वत के साथ आता है, फरमाए अलामा इकबाल की एक पोएम है, वो जुए कोहिस्तान उचकती हुई, अटकती लचकती सिरकती हुई, उछलती फिसलती संभलती हुई, बड़े पेच खाकर निकलती हुई, रुके जब तो सिल चीर देती है ये, पहाड़ों के दिल चीर देती है ये। क्या पता चला कि मुसलमान कितना स्ट्रांग होता है, पहाड़ों के दामन को भी छिलता है। यानी मुसलमान और बेअमल, मुसलमान और बेहिस, मुसलमान और बेकार, ये दो अपोजिट चीजें हैं। एक असल मोमिन उछलता कूदता भागता दौड़ता इधर से उधर से, पत्थरों के सीने तोड़ देता है। पत्थर दिली थे ना मुशरिकीन, दिल फट गए उनके। तो क्या पता चला कि मुसलमान बनना एक शौरी अमल है और यही हयात है। कुरान कहता है जिन्हें ये ईमान मिल गया इन्हें जिंदगी मिल गई, जिन्हें ये ईमान नहीं मिला वो मुर्दा हैं। अमवातुन गैरु अहयाइन वमा यशुरून अय्यान युबअसून, मुर्दा हैं जिंदा नहीं, इन्हें ये शऊर नहीं कि इन्हें जिंदगी कहाँ से मिलेगी। सूरत नहल 21 है। इसी तरह सूरत अनफाल 24 में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ईमान वालो, अहले ईमान अल्लाह और उसके रसूल के हजूर लब्बैक कहो जब वो तुम्हें ऐसी दावत दें जो तुम्हें जिंदगी अता करने वाली हो। ये कौन सी जिंदगी है? ईमान की जिंदगी है। ये दावत कौन सी है? ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कबूल करना। हकीकी ईमान चूंकि वो जुए कोहिस्तानी बनता है, जुए समझ गए ना, दरिया मौज, वो एक लहर मौज और एक तहरीक बन जाता है। इसलिए अकेले एक शख्स को यह हदफ दिया गया यानी टारगेट दिया गया कि पूरी दुनिया की मुकम्मल इस्लाह कर दो। ये रोमन एम्पायर है। आपको मालूम होगा कि रोमन एम्पायर में 90% लोग उस वक्त गुलाम थे और सिर्फ 10% आज़ाद। ये है ईरानियन एम्पायर, कबायली निज़ाम, गुलामी का निज़ाम, दहशतगर्दी और लूट मार का निज़ाम, अगारात का निज़ाम के चलते हुए काफिलों को लूट लीजिए। अगारात कहते हैं छीना चपटी को। जो आप लूट लें वो आपकी मलकियत हो गया। जिस मर्द को आपने इस अगारत और हमले के दौरान फतह कर लिया, इसे पकड़कर हथकड़ी पहना दी, वो हमेशा के लिए आपका गुलाम बन गया। ये था बैनुल इक्वामी कानून यानी इंटरनेशनल लॉ कि जिस औरत को पकड़कर आपने लौंडी बना लिया वो हमेशा के लिए लौंडी बन गई। जिस बच्चे को पकड़कर आपने गुलाम बना लिया वो बुढ़ापे तक आपका गुलाम रहेगा, इसलिए कि आपने असलहे या कुव्वत के जोर पर इसको पकड़कर गुलाम बना लिया। ये थे इंतहाई बड़े बड़े तागूत और इनके जुल्म का निज़ाम। इनके खिलाफ अकेले एक शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जिम्मेदारी दी गई कि इन सब को ठीक करना है, और उन्होंने कर दिया। इसलिए कि वो खड़ा पानी नहीं, वो तो लहर यानी मौज थे, वो तो तहरीक और एक तूफान थे। अल्लामा इकबाल कहते, खुद बदानी कदर तन अज जान बूत, कदर जान अज पर तू जाना बूत। इतनी सी बात तो तुम खुद जानते हो कि जिस्म की कदर व कीमत जान है, यानी कहते हैं ना जान है तो जहान है। जब तक जान जिस्म में मौजूद है, रूह मौजूद है, जिस्म कीमती है। जब रूह निकल जाती है और फौरन डिके हो जाता है तो जिस्म ज़ाया हो जाता है, बदबू पड़ जाती है, इसे फौरन दफन कर देते हैं। कदरे जान अस पर तू जाना बूद, और जान की कीमत इस वक्त होती है जब इस पर अल्लाह की महबूब हकीकी की नजर करम हो जाए, जब इसका ताल्लुक यानी कमिटमेंट इससे जुड़ जाए, सही ईमान नसीब हो जाए, इससे जान में जान आती है। क्या पता चला कि जिस्म की खूबसूरती जान के साथ है। जान को आप रूह भी लिख सकते हैं। जब तक जिस्म में रूह रहती है हम खूबसूरत भी हैं, हम लोगों के काम के भी होंगे। जब रूह निकली तो जिस्म गलने सड़ने लगता है, झड़ने लगता है। पर जान या रूह की कीमत क्या है, उस जान पर अल्लाह की नजर पड़े तो क्या पता चला कि ईमान एक हरकत देता है। अपने ऊपर देखिए और अपने इर्द गिर्द देखिए, हम कब हरकत में आते हैं, जोश कब आता है। 10 मेहमान आ रहे हैं रात खाने में, देखिए जरा फिर हमारी सुस्तियां कहां भागती हैं। नींद खुल जाती है रातों को कब, जब एयरपोर्ट पे मेहमान को लेने जाना होता। हमें हमारा ये ईमान क्यों नहीं जगाता, सुस्तियां क्यों नहीं खत्म होती। और याद रखिए 98% हमारी सबसे बड़ी वजह सुस्ती है। और सुस्ती आती कब है, जब डोरी टूटती है। शैतान उस बंदे पे कब्जा ही नहीं करता जिसका नमाज कुरान दुआओं से ताल्लुक हो, आता है भाग जाता है। इधर आप जरा सा कमजोर करें खुद को, देखिए जरा आपके सर पे नाचता है। आज उम्मत को इसने सुस्त किया हुआ है। नमाज भी 5 वक्त की पढ़ लें तो बड़ी बात है उनके लिए।